दिन भर तारीख 18 नवंबर दिन शुक्रवार में हूं मोहनलाल शर्मा। नोटबंदी पर भारत की संसद से सड़क तक मचा है घमासान। लाइनों में लगकर 55 लोगों की मौत के विपक्ष के आरोप के सवाल पर बीबीसी से उलझे अरविंद केजरीवाल।
55 लोगों पर मौत हो गई इस देश के अंदर, शर्म आती है कि आप जैसे पत्रकार ये कहते हैं कि उसको लिंक नहीं किया जा सकता। कहते थोड़ी सी इनकन्वीनियंस है, ये थोड़ी सी इनकन्वीनियंस, जांच कराओगे आप इनकी?
वायसराय से लेकर अब तक राष्ट्रपति भवन में रह चुके लोगों के दिलचस्प पहलू सुनिए आज की विवेचना में।
राजन बाबू को इत्तेफाक नहीं था इस बात से। एक तो उनको ये था कि भाई ये टोस्ट क्यों होता है, जब हम शराब पीते नहीं और हम शराब पिलाते नहीं तो हम किस बात का टोस्ट करते हैं? तो व्हाई नॉट वी डू द शरबत।
पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार संदीप सोनी से। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि 1,000 और 500 के पुराने नोट बंद करने के सरकार के फैसले की वजह से दंगों की नौबत आ सकती है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वो उसके फैसले के खिलाफ जनता की ओर से दायर किए जा रहे मामलों पर ध्यान नहीं दे, लेकिन इस मामले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट के जज ने जनहित का हवाला देकर सरकार के इस आग्रह को मानने से मना कर दिया है। भारत में 8 नवम्बर को 1,000 और 500 के पुराने नोट बंद कर दिए गए थे, जिसके बाद नए नोट हासिल करने के लिए लोग अभी तक बैंक और एटीएम की कतारों में जूझ रहे हैं। यूरोप के नेता बर्लिन में हो रही एक बैठक में अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता हस्तांतरण के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव और चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद यूरोप के नेताओं की अपनी तरह की यह पहली बैठक है। उत्तर अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो का कहना है कि अगले साल जनवरी में जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठेंगे तब भी अमेरिका और यूरोप के साझा हित दोनों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने का काम करेंगे।
A stronger, safer and more prosperous Europe.
नेटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग कह रहे थे, एक सुदृढ़ सुरक्षित और समृद्ध यूरोप का मतलब है सुदृढ़ सुरक्षित और समृद्ध अमेरिका। ये 21वीं सदी के इतिहास का बुनियादी सबक है और हमें ये बात भूलना नहीं चाहिए। नेटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग के शब्द आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मंत्रिमंडल के लिए सहयोगियों को चुनने का काम शुरू कर दिया है। खबरों के मुताबिक ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल का पद अलबामा के सीनेटर और अपने करीबी सहयोगी जेफ सेशंस को देने का मन बनाया है। इसी तरह माइक पोम्पियो को CIA का निदेशक और माइकल फ्लाइन को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनने के लिए कहा गया है। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी ने म्यांमार के रखाइन प्रांत में आम लोगों की सुरक्षा पर गहरी चिंता जताई है, जहां सुरक्षा बल हिंसक उग्रवादियों को खदेड़ने का दावा कर रहे हैं। ये वो इलाका है जहां रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का कहना है कि हिंसा की वजह से हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र ने पड़ोसी देश बांग्लादेश से कहा है कि वो हिंसा की वजह से पलायन कर रहे लोगों को सुरक्षित रास्ता प्रदान करे। हालांकि बांग्लादेश ने रोहिंग्या मुसलमानों के पलायन के मद्देनजर अपनी सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है। तुर्की में सत्तारूढ़ सांसदों ने उस विधेयक पर अपनी असहमति जताई है जिसमें कहा गया है कि किसी नाबालिग लड़की से बलात्कार करने वाला व्यक्ति यदि उससे विवाह करता है तो उसके खिलाफ बलात्कार का मामला नहीं चलाया जाएगा। तुर्की की सरकार का कहना है कि ये माफ़ी ऐसे बलात्कारियों के लिए है जिन्हें इस बात का एहसास नहीं कि उन्होंने यौन संबंध गैर कानूनी तरीके से बनाए, लेकिन आलोचक कहते हैं कि सरकार इस विधेयक के जरिए बलात्कार को वैधानिक बना रही है। तुर्की में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले पिछले कुछ दशकों में तेजी से बढ़े हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। आज से ठीक 10 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 8 बजे आश्चर्यजनक रूप से वो घोषणा की थी जिसमें कि सब सकते में आ गए। वो घोषणा थी,
आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे।
जनता को उम्मीद थी कि 10 दिन बाद हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। पुराने नोट जमा करने और नए नोट हासिल करने की जद्दोजहद में बैंकों और एटीएम के सामने लोगों की लंबी कतारें हैं। दिल्ली की सड़कों पर सरकार के फैसले के विरोध और समर्थन में प्रदर्शनकारी हैं। संसद में सत्ता पक्ष व विपक्ष भिड़े हुए हैं और इस आपाधापी में देश की सुप्रीम अदालत चिंतित है। दिनभर नोटबंदी पर क्या कुछ हुआ सुनिए अमर शर्मा से।
वो की इंटरव्यू, अरे सुनो चुप रहो।
आज संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन था, लेकिन सदन की कार्यवाही ठीक से नहीं चल पा रही। नोटबंदी के मुद्दे को लेकर सदन में लगातार हंगामे के चलते दोनों सदनों में काम नहीं हो सका और कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित रही। राज्यसभा में बीजेपी सांसद कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद से माफी की मांग को लेकर हंगामा कर रहे थे। दरअसल कल आजाद ने एक विवादित बयान दिया था, जिसे सरकार के कड़े विरोध के बाद कार्यवाही के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। कल कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने संसद में नोटबंदी के बाद देश में हुई मौतों की संख्या की तुलना कुछ दिनों पहले उड़ी में हुए चरमपंथी घटना में मारे गए सैनिकों की संख्या से कर दी थी। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि नोटबंदी के फैसले के बाद 10 दिनों में 55 लोगों की मौत हो गई है और पीएम मोदी को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए।
10 दिन में 55 बेकसूर लोग मौत के मुंह में धकेल दिए गए, उनकी एक सूची हम आपको दे रहे हैं। उनका क्या कसूर था? 3 हृदय विदारक घटनाएं मोदी सरकार के इस तुगलकी फरमान का पर्दाफाश करती हैं।
इन सब के बावजूद मुसीबत बताने वाले, गलती बताने वाले और सवाल पूछने वाले व्यक्ति को देशद्रोही कहा जा रहा है। समय आ गया है कि इस देश की जनता निर्णय करेगी कि असली देशद्रोही कौन है।
कई राजनीतिक दलों ने इस बारे में सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। जेडीयू के सांसद शरद यादव ने कहा कि जान किसी की भी जाए, वो देश के ही लोग हैं।
तो उरी में भी जो है वो इंसानों का ही, तो हमारे जो लोग थे वो फौजी थे, लेकिन ये भी तो जमीन पर डेली वेजेस है, रात दिन जमूर भर अपना काम देश के लिए किए, वो ये तो इनकी मृत्यु जो है उसके बारे में ये नया निकालना, यानी इंसान की जिंदगी सबकी बराबर है।
वही क्रिमिनल लॉयर और एनसीपी से राज्यसभा सांसद माजिद मेमन का कहना है ये तुलना ठीक नहीं।
सभी कतारों में घंटों खड़े हैं और कुछ 2-4 हज़ार रुपए लेने के लिए सारा दिन जाया कर रहे हैं, कुछ लोगों की मौत हो गई है। जो मौतें उर्वी के मामले से ज़्यादा हैं तो नंबर के हिसाब से ये कंपैरिजन ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आतंकवाद वाले मामले में या पाकिस्तान या हमारे दुश्मन के खिलाफ जो लड़ाई हुई उसमें हमारे साथ मरे हुए उसके साथ उसकी तुलना करना मुझे उचित नहीं लगता।
संसद में हो रहे हंगामे और चर्चा के सवाल पर वेंकैया नायडू ने कहा,
राज्यसभा में चर्चा शुरू हो गया, लोकसभा में भी हमने कहा तुरंत चर्चा शुरू करो, हमको कोई आपत्ति नहीं। वो लोग कह रहे कुछ एडजर्नमेंट मोशन के नाते चर्चा होना चाहिए, सरकार ने कहा हम तैयार है, मोशन का नाम क्या है वो विषय नहीं ना, काम क्या है उसके बारे में सरकार ने चर्चा करने के लिए अपना संसिद्धता व्यक्त किया है।
तो कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने चर्चा नहीं कराने पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाया।
इतनी बड़ी तादाद में जब करोड़ों लोग इससे वंचित हैं, ये बैंकिंग सहूलत से और करेंसी से, तो इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए सरकार क्यों तैयार नहीं है, क्यों प्रेस्टेज इश्यू बना रही है? इसमें कोई प्रेस्टेज इश्यू होना नहीं चाहिए, क्योंकि कम से कम अगर एडजर्नमेंट मोशन में चर्चा हुई तो उनको ये लगेगा कि वो भी सीरियस है और सारे पार्लियामेंट मेंबर भी इस विषय पे सीरियस है।
कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया है कि देश में 62% लोग कृषि व्यवस्था पर आधारित हैं और सरकार के नोटबंदी के फैसले से उनकी कमर टूट गई है। इसके साथ ही किसानों के पास बीज खाद खरीदने और मजदूरी देने के लिए भी पैसे नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मांग की है कि किसानों की मदद के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए।
सरकार का बनाया हुआ संकट ये कोई देवी आपदा संकट नहीं है, देवी आपदा परेशानी नहीं है, ये सरकार ने जानबूझ करके फैसला लेकर के और सबसे ज्यादा तकलीफ और परेशानी किसानों के सामने आई है। तो हम समझते हैं कि 500 और 1000 रुपए कम से कम किसानों को छूट मिलनी चाहिए, और जहां सीधा सीधा किसानों का संपर्क है कोऑपरेटिव बैंक, अगर मान लीजिए पैसा आप नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो कुछ तो मदद करिए कोऑपरेटिव बैंक की, जिससे किसान को लाभ पहुंचे। आप अगर करेंसी में छूट दे सकते तो देनी चाहिए, और अगर नहीं दे सकते तो कम से कम कोऑपरेटिव बैंक को तो शुरू कराइए, उसकी भी ब्रांचेस हैं, नहीं तो बैंक ही बंद हो जाएंगे, बैंक पे भरोसा कौन करेगा।
इस बीच सरकार ने आज पुराने नोटों के बदले नए नोट देने के लिए 4500 रुपए की सीमा को घटाकर 2000 रुपए कर दिया है, और सरकार का कहना है कि इस कदम से ज्यादा लोगों को नकदी मिल सकेगी।
अमर शर्मा की रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि नोटबंदी के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस फैसले को वापस लिए जाने के लिए मोर्चा खोले हुए हैं। विरोध क्यों, तर्क सुनने के लिए अरविंद केजरीवाल के पास जा पहुंचे बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव।
आपका निशाना मोदी सरकार ही क्यों रहते हैं? मेरे ख्याल से भारत में अगर एक पोल कराया जाए कि सबसे बड़े मोदी हेटर कौन है तो वो होगा अरविंद केजरीवाल।
मैं सबसे बड़ा हेटर हूँ, पर आपके इंटरव्यू का मुद्दा मैं नहीं हूँ।
बिल्कुल।
आपके इंटरव्यू का मुद्दा मोदी भी नहीं है।
बिल्कुल।
आपके इंटरव्यू का मुद्दा जनता है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि पुरानी सरकारों ने भी किया, पुरानी सरकारों को भी इसका खामियाजा भुगतना चाहिए। 1,14,000 करोड़ रुपए का जो कर्जा माफी की, इतना बड़े स्तर के ऊपर कर्जा माफी पहले हुई नहीं है।
अच्छा।
नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की। अब 8.5 लाख करोड़ रुपए में से 1,14,000 करोड़ रुपए तो माफ कर दिए, बाकी बचने के लिए बैंकों के पास, बाकी माफ करने के लिए बैंकों के पास पैसे नहीं रहे, बैंक कंगाल हो रहे थे, तब ये पूरा षड्यंत्र रचा गया।
मैं पिछले 8-9 दिनों में बहुत से ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनको तकलीफ रही है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग मिले जो कह रहे हैं ठीक है थोड़ी तकलीफ है लेकिन चीजें शायद बेहतर हों, एक उम्मीद के साथ वो उसको देख रहे हैं। आपकी नाउमीदी का कारण क्या है?
विजय माल्या, जिसके ऊपर 8,000 करोड़ रुपए का कब्जा था, कर्जा था, उसको पकड़ने के बजाय एक दिन रात को हवाई जहाज में बिठा के उसको देश से भगा दिया।
ये आपका आरोप है?
नहीं, भागा है कि नहीं भागा?
बिल्कुल, एक्सट्रेडिशन प्रोसीडिंग्स भी जारी हैं।
वो तो जारी रहेंगी, जिंदगी भर जारी रहेंगे, वो वापस नहीं आने वाला। सारी जनता देख रही है, अंधी थोड़ी है जनता, सारी जनता देख रही है, भगा दिया उसको।
सर, हमें जनता को ये बताना जरूरी है कि ये आपके आरोप है।
हाँ, मेरे आरोप है।
हाँ।
जो कुछ मैं बोल रहा हूँ मेरे आरोप है, आपके आरोप थोड़ी।
बिल्कुल।
अब उसको आप कह रहे हो एक्सट्रेडिशन की ट्रीटी, उसको वापस लाने की कोशिश, उसको वापस तो वो आने वाला नहीं। परसों 6,000 करोड़ में से 1,200 करोड़ रुपया विजय माल्या का माफ कर दिया। अरे उसको सजा देनी चाहिए कि उसके लोन माफ करने चाहिए? तो ये बेवकूफ बना रहे हैं। अब ये 10-11 लाख करोड़ रुपया आएगा और वो इसमें से 7-8 लाख करोड़ रुपया इन बड़े बड़े अरबपतियों का माफ हो जाएगा। अब मन में प्रश्न आता है क्यों माफ कर रहे हैं इनका, इनसे क्या रिश्तेदारी है? आज एक भाई भाई के काम नहीं आता तो इनसे क्या रिश्तेदारी है, इनसे क्या रिश्ता है? 55 लोग मर गए देश के अंदर
अरविंद जी,
500 और 1,000 रुपए के नोट खत्म होने से।
अरविंद जी, ये बहुत गंभीर मामला है।
ये बिल्कुल गंभीर मामला
है। 55 लोगों की मौत
55 लोगों की मौत हो गई इस देश के अंदर, और वो लोगों के लाइन में खड़े होने से मौत हो गई। मुझे शर्म आती है कि आप जैसे पत्रकार ये कहते हैं कि उसको लिंक नहीं किया जा सकता। कैसे लिंक करेंगे?
ये बहुत
कैसे
हुई मामला है,
कैसे लिंक करेंगे इसको? क्या तो थोड़ी सी इनकन्वीनियंस है,
बिना
ये थोड़ी सी इनकन्वीनियंस, जांच कराओगे आप इनकी जांच? अरे लोग मरते जा रहे हैं देश के अंदर, लोगों का धंधा बंद हो गया, लोगों के घर में खाने को नहीं है, जांच नहीं हुई।
मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि अगर जो सिर्फ अगर साधारण आदमी को तकलीफ हो रही है, वो कह रहा है कि तकलीफ हो रही है, लेकिन अगर वो ये भी कह रहा है कि हो सकता है ये बेहतर के लिए हो, तो उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते।
कैसे बेहतर है बताओ?
ये वो कह रहा है,
अमीरों का पैसा कहाँ निकल रहा है? इसका मतलब जितने बड़े 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 लोग हैं जिनके पास सबसे ज्यादा काला धन है, उनके यहाँ होम डिलीवरी हो रही है, उनको लाइनों में नहीं लगना, उनको उनको जरूरत ही नहीं है। 2,000 कर लो, 4,000 कर लो, 4,500 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। एक नया पैसा काला धन नहीं आ रहा, जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, यही जरूरत है इस जनता को समझने की।
आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव की पूरी बातचीत आप सुनिएगा रविवार को संडे दिन भर में। और अब आपको बताते हैं कल किस पर होगी चर्चा।
बीबीसी इंडिया बोल।
क्या 1,000 और 500 के पुराने नोट बंद करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक जुआ खेला है? क्या इस फैसले का असर अगले विधानसभा चुनावों के नतीजों पर पड़ेगा? क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा या उसे मोदी सरकार के फैसले की राजनीतिक कीमत चुकानी होगी? यही है इस हफ्ते बीबीसी इंडिया बोल का विषय। क्या है इस विषय पर आपके विचार? शनिवार 19 नवंबर को शाम 7:30 बजे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त डायल करें इन टोल फ्री नंबरों पर 1811 7000 और 1811027001।
बीबीसी इंडिया बोल।
तो कल नोटबंदी के विषय पर हमारी चर्चा होगी। वक्त है विवेचना का। राष्ट्रपति भवन न सिर्फ भारत के राष्ट्रपति का आवास है बल्कि भारत के वैभव का एक प्रतीक भी है। हाल ही में एलिजाबेथ कनिंगम और सलमा हुसैन की एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, अराउंड इंडियाज फर्स्ट टेबल, डाइनिंग एंड एंटरटेनमेंट इन राष्ट्रपति भवन, जिसमें वायसराय के समय से लेकर अब तक राष्ट्रपति भवन के राजकीय भोजों में परोसे गए व्यंजनों के इतिहास पर बारीक नज़र डाली गई है। आज की विवेचना में रेहान फजल नज़र दौड़ा रहे हैं इस पुस्तक के कुछ दिलचस्प पहलुओं पर।
जब सन 2000 में बिल क्लिंटन भारत आए तो अटल बिहारी वाजपेयी से उनकी बातचीत से ज्यादा चर्चा थी कि उन्होंने मौर्या शेरेटन होटल के बुखारा रेस्टोरेंट में खाया क्या। रेस्टोरेंट के मैनेजर ने उन्हें पहले ही चेता दिया, यहां मेहमान कांटे छुरी से नहीं बल्कि हाथ से खाना खाते हैं। क्लिंटन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने हाथ से ही खाना खाया और अपनी मेज पर परोसे हर व्यंजन का दो दो बार लुत्फ उठाया। मीठे में उनको कुल्फी और फिरनी दी गई। आखिर में मैनेजर ने उनसे औपचारिकतावश पूछा, हुजूर कुछ और खाना चाहेंगे? क्लिंटन का जवाब था, अगर मैं एक और लुकमा भी अपने मुंह में रखता हूं तो मुझे यहां से स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ेगा। यहां तो क्लिंटन की आवभगत एक निजी रेस्टोरेंट में हो रही थी, लेकिन राजकीय भोजों में स्वाद कूटनीति के जरिए कई राष्ट्रीय हितों को साधने की कोशिश की जाती है। एक मशहूर अंग्रेज राजनयिक अर्नेस्ट सेठो का मानना था कि राजकीय भोज एक लक्ष्य के माध्यम होते हैं, न कि स्वयं लक्ष्य। हिलेरी क्लिंटन कहती हैं कि भोजन सबसे पुराना कूटनीतिक औजार है, जबकि फ्रेंच राष्ट्रपति फ्रांसवा ओला का मानना है कि अगर खराब खाना परोसा जाए तो कूटनीति कहीं अधिक मुश्किल हो जाती है। एलिजाबेथ कनिंघम और सलमा हुसैन ने अपनी किताब अराउंड इंडियाज फर्स्ट टेबल डाइनिंग एंड एंटरटेनमेंट इन राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति भवन का, जिसे पहले वायसराय हाउस कहा जाता था, बहुत दिलचस्प वर्णन किया है।
राष्ट्रपति भवन के वॉइसरॉयज के कुक जो थे वो सब कलकत्ता से आए थे, सामान सारा कलकत्ता से आया था, यहाँ तक के पकाने के बर्तन क्रॉकरी सब कलकत्ता से आई थी। तो ये कुक जो थे ये आसामी बरुआ हुआ करते, और दूसरे इस्माइल्स होते थे जो कि ढाका से आए थे, और एक मोंगू कुक हुआ करते थे जो कि क्रिश्चियन थे। और उस जमाने के अंदर आप देखिए तो वो बड़े बड़े पतीले कॉपर के उसमें खाना बना करता था, कोई फैसिलिटी नहीं थी। टिल 1974 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन दिस कुक्स हैड ओनली फैन इन द किचन। जैसे कि कभी कभी तो हम कच्चे बनियान में खाना पकाते थे, और ये तकलीफ उनकी देखी कलाम साहब ने, और कुछ तकलीफें देखी जैल सिंह ने। जब जैल सिंह आए तो उन्होंने कोशिश करी कि कुछ कूलर लगवा दिया जाए इन लोगों के लिए, और रेफ्रिजरेटर भी लगा दिया जाए। उससे पहले यहाँ पर एक कूल रूम हुआ करता था। कूल रूम इसलिए कि अंग्रेज जो था वो पेस्ट्री का और पुडिंग का बड़ा शौकीन, उसके लिए खास कूल रूम होता था, और बेकर वहाँ जो है वो बैठ के बनाया करता था। और ये लोग जो बेचारे भट्टी पे खाना बनाते थे वो जाते थे भाग भाग के, दो तीन मिनट में ठंडे होके फिर आते थे और फिर अपना खाना बनाते थे।
15 फरवरी 1931 को राष्ट्रपति भवन के उद्घाटन के दो दिन बाद ही महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन के संभवतः पहले सरकारी मेहमान बने। नमक सत्याग्रह के बाद जेल की अवधि काट कर वॉयसराय हाउस पहुंचे महात्मा गांधी को जब चाय ऑफर की गई तो उन्होंने बहुत शरारत से कहा कि वो नींबू पानी पीना पसंद करेंगी, वो भी एक चुटकी नमक के साथ। वॉयसराय हाउस की भोज परंपरा का एक और जिक्र मार्च 1947 में मिलता है, जब लॉर्ड माउंटबेटन वहां आखिरी वायसराय के रूप में पधारे थे। उनकी बेटी पामेला माउंटबेटन अपनी किताब इंडिया रिमेम्बर्ड में लिखती है,
जब एडवीना माउंटबेटन मार्च 1947 में राष्ट्रपति भवन पहुंची तो उन्होंने इच्छा प्रकट की कि उनके कुत्ते को कुछ खाना दिया जाए। तुरंत चांदी की प्लेट में पका हुआ मुर्ग पेश किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध की मार झेल रहे ब्रिटेन में खाने के सामान की किल्लत की आदि हो चुकी एडवीना ने वो मुर्ग अपने कुत्ते को नहीं दिया। उन्होंने अपने आप को बाथरूम में बंद किया और उसे खुद खाया।
आजादी के बाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राजकीय भोज के समय मेहमान राष्ट्राध्यक्ष की सलामती का जाम पिए जाने की प्रथा पर आपत्ति थी, खासतौर पर उस समय जबकि राष्ट्रपति के किसी भी भोज में शराब सर्व नहीं की जाती थी।
राजन बाबू को दो तीन बातों का बड़ा उनको इत्तेफाक नहीं था इस बात से। एक तो उनको ये था कि भाई ये टोस्ट क्यों होता है, जब हम शराब पीते नहीं और हम शराब पिलाते नहीं तो हम किस बात का टोस्ट करते हैं, तो व्हाई नॉट वी डू द शरबत। सो इस बारे में बहुत ज़्यादा बहस चली और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री गॉट इन्वॉल्व इन ऑल दैट, बट ही डिड नॉट सक्सीड इन डूइंग। बट ये हो गया कि शरबत के साथ अब दोस्त होने लग गया है। फिर उन्होंने ये कहा कि भैया ये तो बड़ा सारा वेस्ट हो जाता है, क्या बुरा लगता है, थाली में तो हम खाना खाते हैं और हम लोग यहाँ प्लेटों में खाना देते हैं, तो चलो व्हाई नॉट इंट्रोड्यूस द इंडियन स्टाइल ऑफ सर्विंग फूड एंड खाना जो है वो थाली में सर्व करने लगे। मगर ही ऑल्सो रियलाइज कि बहुत खाना बर्बाद होने लगा, और इतना खाना बर्बाद होने लगा कि कहते हैं वो खाना सब जमा होकर बंगाली मार्केट में एक दुकान थी वहाँ भेजा जाता था, और वो लिख के लगा देता था वहाँ खाना फ्रॉम प्रेसिडेंट हाउस। तो बाद में वो डिसकंटिन्यू हुआ कि वेस्टेज बहुत हुआ करती थी और खर्चा बहुत होता था।
1988 में जब चीन के प्रधानमंत्री ली फंग भारत आए तो उन्हें राष्ट्रपति भवन में ठहराया गया। उनके सम्मान में राष्ट्रपति वेंकट रमन ने मुगल गार्डन में शामियाने के नीचे दोपहर के भोज का आयोजन किया। आर वेंकट रमन अपनी आत्मकथा माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स में लिखते हैं,
अपने मेहमानों को खुश करने के लिए राष्ट्रपति भवन के रसोइयों ने भारतीय व्यंजनों के साथ साथ कुछ चीनी व्यंजन भी बनाए थे। ली फंग को वो इतने अच्छे लगे कि उन्होंने उन्हें दूसरी बार मांग कर खाया, और फिर वो बोले इतना स्वादिष्ट चीनी खाना उन्होंने चीन के बाहर पहली बार खाया है। भोजन के दौरान भारतीय और चीनी नेताओं के बीच की करीबी देखकर ये बिल्कुल आभास नहीं मिलता था कि इनके बीच कई सालों से गहरे मतभेद रहे हैं। ये फूड डिप्लोमेसी का बेहतरीन उदाहरण था।
जब राष्ट्रपति भवन में कोई बैंक्वेट दिया जाता है तो उसकी तैयारी किस तरह से होती है? राष्ट्रपति भवन के मुख्य शेफ रहे और इस समय ITDC के एग्जीक्यूटिव शेफ मचिंद्र कस्तूरे बताते हैं।
एक एक महीना दो दो महीना पहले शुरुआत होती, हमें खबर मिल जाती कि फलाने फलाने राष्ट्र के प्रेसिडेंट साहब यहाँ आ रहे हैं हमारे पास बात करने के लिए, लंच करने के लिए। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन जैसे ही आती है तो MEA की तरफ से मैसेज आ जाता है, वो मैसेज सेक्रेटरी मैडम के पास आया था, सेक्रेटरी मैडम की तरफ से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर देन वी हैव अ सेक्शन कॉल्ड प्रेसिडेंट हाउस होल्ड सेक्शन, द CPH कंट्रोलर ऑफ प्रेसिडेंट हाउस होल्ड, ही इज़ द बॉस, ही गिव द डायरेक्शन टू मी कि कस्तूरे मेनू बनाना है। तो हम लोग वैसे फिर इनकी ईटिंग इटिनरी हैबिट आ जाती है हमारे पास 15 दिन पहले या 20 दिन पहले आ जाती है कि इनकी एलर्जी क्या है, इनकी खाने की हैबिट क्या है, स्टेपल डाइट क्या है उनका, मैडम क्या खाती है, मतलब स्पाउस क्या खाते हैं, वो क्या खाते हैं, सारे डिटेल्स आती है हमारे पास। वो कॉन्फिडेंशियल होती है बट शेफ के पास तो आती है। और हमारा कंसेप्ट ये था कि हमारे सारे प्रेसिडेंट साहब का कहना ये था व्हेन वी गो टू अब्रॉड तो हमें वहाँ का कॉन्टिनेंटल खाना परोसते, तो व्हेन दे कम टू इंडिया वी मस्ट ऑफर देम इंडियन फूड, सूप होगा फर्स्ट कोर्स में। तो जनरली हम कॉमन रखते थे सूप, वेजिटेरियन तो किसी को वेज नॉनवेज का सवाल लेने का पहले नहीं होता, तो आसान हो जाता सर्विस करना। सेकेंड कोर्स में होता था आंत्रे, आंत्रे में हम देते थे एक फिश एक चिकन और साइमल्टेनियसली वेजिटेरियन दो वेजिटेरियन आइटम, इक्विवेलेंटली ड्राई आइटम होते तवे पे सॉटे शैलो फ्राई करके दे देते, जो मतलब जो आपका एपिटाइट बढ़ाए गए इसके लिए दो चीज़ें सर्व किया जाती है। जैसे सूप खत्म होने के बाद आंत्रे, आंत्रे खत्म होने के बाद हमने मेन कोर्स पे चले जाते। मेन कोर्स में हमारे होते थे नॉन वेजिटेरियन के लिए जैसा मटन होगा, जैसे मैंने ऊपर फिश दिया चिकन दिया तो इसमें मैं मटन देता। अभी हम लोग ऐसे सोच के चलते थे कि मटन चिकन फिश तीनों मिलना चाहिए नॉन वेजिटेरियन को, वेरा तो वेजिटेरियन को हम सोचते थे पनीर जरूर मिलना चाहिए, साइमल्टेनियसली इक्विवेलेंट दैट कैलोरीज होनी चाहिए, ऐसा आइटम हम वैसे बनाते थे। इसके बाद हम तीन कॉमन आइटम रखते थे जिसमें एक ग्रेवी वाला आइटम होता था, जैसे दम आलू हुआ या कोई कोफ्ता हो गया या लौकी की नज़ाकत हो गया ग्रेवी के साथ, और दो ड्राई आइटम जैसे कुरकुरी भिंडी दे दिया या आलू गोभी या गोभी मटर। उसके बाद स्वीट आता था, स्वीट में डेजर्ट में आई यूज़ टू मेक श्योर कि एक कॉन्टिनेंटल स्वीट जरूर रखता था, इसलिए कि कॉन्टिनेंटल अगर मान लो इंडियन स्वीट पसंद नहीं आए तो दे कैन हैव कॉन्टिनेंटल स्वीट।
राष्ट्रपति भवन की मेज पर यह पहले से ही तय होता है कि कौन किस कुर्सी पर बैठेगा, कब और कैसे भोजन का अगला कोर्स शुरू होगा, इसके लिए भी खास व्यवस्था की जाती है।
सीटिंग प्लान पर भी रिसर्च होती है और उनको भी उस लिहाज से बिठाया जाता है जिससे एक तो स्टेटस होता है और उसके बाद बहुत सारे लोग जो बाहर के होते हैं तो ये देखा जाता है कि कौन किसके साथ जाएगा और मेल कैसे होगा उसका। जो चीफ गेस्ट होता है वो प्रेसिडेंट के सामने बैठता है और वाइस प्रेसिडेंट उनके पास बैठते हैं, उनकी बीवी बैठते हैं। अब रहा सवाल कि पता लगा वेजिटेरियन कौन है, तो जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनके सामने एक गुलाब का फूल रख दिया जाता है ताकि सर्व करने वाला जो बटलर है उसको मालूम हो कि ये वेजिटेरियन है।
और वो जो लाइट का क्या कंसेप्ट है,
ये पुराने जमाने से अंग्रेजों के जमाने की लगाई हुई लाइट्स हैं और जैसे वो बत्ती रहती है तीनों, एक ग्रीन है, एक रेड है और एक ऑरेंज, दो बत्तियां ज्यादातर काम लेते हैं करती हैं, पीछे उनका हेड बटलर बैठा रहता है और हर कुर्सी के पीछे बटलर खड़ा रहता है। तो जब ग्रीन आती है बत्ती, उसको पता है कि मुझे सर्विस शुरू कर देनी है। जब रेड बत्ती होती है तो उसको पता है कि मुझे अब ये फर्स्ट कोर्स क्लियर करना है। पर ये सिस्टमैटिक होता है कि ना गेस्ट को वेट करना पड़ता है और ना बटलर को वेट करना पड़ता है।
मचेंद्र कस्तूरे को अभी तक वो दिन याद है जब उन्होंने राष्ट्रपति ओबामा के लिए खाना बनाया था जिसे उन्होंने बहुत पसंद किया था।
पानी जैसा सूप दिया था पतला, कि रीज़न बियॉन्ड इट कि ज़्यादा खाना खा सके, बाकी की चीज़ें टेस्ट कर सके कम से कम। जनरली हमारा बैंकर्स होता 90 और 100 आदमी के बीच में होता, बट ओबामा साहब आए तो आई हैव केटर अराउंड 140 पीपल, एंड वो भी हमने लॉन में किया था बाहर, और बढ़िया किया था। उसमें बड़े जिक्र की बात है कि प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल डेमो देने के लिए एक दिन पहले आके खुद बैठे कि बोले आई एम सिटिंग हियर, प्लीज़ सर्व मी द सूप फ्रॉम देयर, चाहे आप गर्म पानी दे दो बट मेरे को टेस्ट करवाओ क्या खाना गर्म रहता क्या नहीं। मतलब इतनी इन्वॉल्वमेंट प्रेसिडेंट साहब की होती थी उनमें अपने गेस्ट के बारे में। ओबामा साहब को तो मेन कोर्स में राने अली शान करके बहुत बढ़िया डिश है हमारी, जिसमें रोस्ट लेग ऑफ लैम पूरा मैरिनेशन करके थोड़ा पका के उसको डीमो मतलब निकाल के उसको स्किन उतार के सब कुछ क्लीन करके उसका हड्डी को थोड़ा डेकोरेशन कर देते सिल्वर फॉइल से फूल वूल बना के, और उसके ऊपर वो उसके स्लाइस स्लाइस काट के उसका डेकोरेशन करते और एक सॉस बनाते थे हम हंकर्ड करके, मतलब हंकर दही को हैंग कर दिया, वो हंकर लेके उसमें केसर वेसर मिला के उसको डेकोरेशन करके साथ में बॉयल वेजिटेबल वगैरह सजा के इतना सर्विस कर देते थे। ये बहुत अच्छी डिश थी, उनको काफ़ी पसंद भी आई। इसके अलावा मैंने एक महाराष्ट्रियन डिश भी बनाई थी, मैडम वॉज इंसिस्टिंग पूरनपोली बनाई थी एज अ स्वीट, तो मैडम ने उनको पूरनपोली भी खिलाई और उन्होंने बड़े शौक से खाई पूरनपोली।
कभी कभी सारी तैयारियों के बावजूद आखिरी मिनट पर ऐसा कुछ होता है जिसकी उम्मीद आप कभी नहीं करते।
एक बार स्पेन के किंग एंड क्वीन आई थी, एंड लास्ट मोमेंट आई मीन द बैंक्वेट जनरली होता था शाम को 7 बजे, तो अराउंड 5:30 आई रिसीव अ फोन कॉल सेइंग दैट माय बॉस सीपीएस सेइंग दैट कि शेफ ये तो इंडियन खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे, इनके लिए कॉन्टिनेंटल खाना चाहिए, क्या हो सकता है। मैंने कहा सर हो जाएगा नो प्रॉब्लम, कितना बजे अभी 1.5-2 घंटा है, मैं कहा नो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैंने अपना दिमाग चलाया, सूप तो कॉमन होता है ठीक है, आंतरे भी हमारे ड्राई होते ही कैन यू ड्राई आंतरे, ऑफकोर्स लेस स्पाइसी, उनके लिए मैंने थोड़ा सा लेस स्पाइसेस कर दिया, और मेन कोर्स में मैंने रैक ऑफ लैम मतलब जो लैम होता है लैम चॉप, वो मैंने 4 के जॉइंट्स एक साथ करके उसको जोड़ के एक साथ बना के थोड़ा डेकोरेशन करके पका के एक दूसरे में जोड़ के इसको सजा के ऐसा दे दिया कि मतलब इसका प्रेजेंटेशन भी बढ़िया हो, साथ में थोड़ा बॉयल वेजिटेबल थोड़ा सा राइस, तो मतलब उनको खाने में भी मजा आया और सॉस भी सेपरेट सर्व किया। और कॉन्टिनेंटल स्वीट मेरे पास होता था, इंडियन स्वीट भी मैंने कहा टेस्ट के लिए जरूर देना, तो दे एंजॉयड स्वीट आल्सो इंडियंस।
राष्ट्रपति भवन में दिया जाने वाला हर भोज विदेशी मेहमान के लिए भारतीय संस्कृति की खिड़की खोलता है और इसको सफल बनाने में एक नहीं कई लोगों का हाथ होता है। रसोइये, बेकर्स, हलवाई, बटलर, मेज और कमरों को साफ करने वाले लोग फूड डिप्लोमेसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। रेहान पदल, बीबीसी दिल्ली।
राष्ट्रपति भवन के लजीज व्यंजन। और अब कार्यक्रम में बात करते हैं खेल की खबरों की, आदेश कुमार गुप्त मौजूद हैं। आदेश क्या है आज खेल की खबरों में?
जी देखिए, भारत ने विशाखापत्तनम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज अपनी पकड़ बेहद मजबूत कर ली। आज भारत की पहली पारी 455 रनों पर समाप्त हुई और इसके बाद जब खेल समाप्त हुआ तब इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट खोकर 103 रन था, यानी इंग्लैंड अभी भी भारत से 352 रन पीछे है और उसके 5 विकेट बाकी है। आज इंग्लैंड के जो रूट ही भारतीय गेंदबाजों का कुछ जमकर सामना कर सके। रूट ने 98 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौकों की मदद से 53 रन बनाए। भारत के मोहम्मद शमी ने 15 रन देकर 1, आर अश्विन ने 20 रन देकर 2 और जयंत यादव ने 11 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। इससे पहले आज भारत ने अपनी पहली पारी 4 विकेट पर 317 रन से आगे शुरू की। कप्तान विराट कोहली 167, आर अश्विन 58 और जयंत यादव 35 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अंततः भारत की पहली पारी 455 रन पर समाप्त हुई।
बहुत बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्ता। और इससे पहले के कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि 1000 और 500 के पुराने नोट बंद करने के सरकार के फैसले की वजह से दंगों की नौबत आ सकती है। यूरोप के नेता बर्लिन में हो रही एक बैठक में अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता हस्तांतरण के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी ने म्यांमार के रखाइन प्रांत में आम लोगों की सुरक्षा पर गहरी चिंता जताई है, जहां सुरक्षा बल हिंसक उग्रवादियों को खदेड़ने का दावा कर रहे हैं। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर के इस अंक में अभी इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे हेमंत कुशवाहा। डेढ़ घंटे बाद घटना चक्र कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।